पृष्ठ संख्या 208, चतुर्दश अध्याय, निरपेक्ष विज्ञानवाद, हेगल। कांट के पश्चात यूरोप के दूसरे महत्तम दार्शनिक हेगल हुए। कांट से हेगल तक के संक्रमण काल में फिक्टे और सेलिंग नामक दो और उल्लेखनीय दार्शनिक हुए हैं, जिनका हेगल के दर्शन पर काफी प्रभाव पड़ा है। अतः हेगल के दर्शन का विवेचन करने के पूर्व फिक्टे और सेलिंग के दार्शनिक विचारों को जान लेना आवश्यक है। फिक्टे सन 1762 से 1814 जर्मनी के एक साधारण गांव के एक दरिद्र परिवार में फिक्टे का जन्म हुआ था। उनकी प्रतिभा को देखकर एक धनी सज्जन ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी। उक्त सज्जन की मृत्यु के बाद फिक्टे को फिर मुसीबतें उठानी पड़ी। 18 वर्ष की आयु में वे जेना विश्वविद्यालय में भर्ती हुए। अर्थाभाव के कारण बीच बीच में उनको अपना अध्ययन बंद करना पड़ता था और गृह शिक्षक के रूप में कुछ कमाकर फिर पढ़ाई चालू करते थे। प्रारंभ में उन पर स्पिनोजा के दर्शन का काफी प्रभाव पड़ा। बाद में लाइप्ज़िग नगर में उन्होंने कांट का अध्ययन और अध्यापन प्रारंभ किया। कांट के दर्शन से, विशेषतः कांट की आचार मूलक ज्ञान की परीक्षा से वे अत्यधिक प्रभावित हुए और कोनिग्सबर्ग जाकर उन्होंने कांट से साक्षात संपर्क स्थापित किया। उनकी श्रुति परीक्षा या क्रिटिक ऑफ ऑल रिवलेशन नामक रचना को देखकर कांट अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने फिक्टे के इस प्रथम रचना के प्रकाशन की व्यवस्था कर दी तथा फिक्टे को अध्यापक का पद भी दिला दिया। विवाह करने के 2 वर्ष बाद फिक्टे जेना विश्वविद्यालय में अध्यापक नियुक्त हुए। विभिन्न विषयों पर उनके कई निबंध प्रकाशित होते रहे। उन्होंने एक दार्शनिक पत्र का संपादन भी किया। इस पत्र में एक लेख प्रकाशित हुआ जिस पर फिक्टे की टिप्पणी भी थी। इस लेख और टिप्पणी को धर्म विरुद्ध घोषित किया गया और इस विषय को लेकर एक भारी आंदोलन मचा, जिसके कारण फिक्टे को जेना विश्वविद्यालय के अध्यापक का पद छोड़ देना पड़ा। फिक्टे बर्लिन चले गए और वहां उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भरसक प्रयत्न किया, जिसमें वे सफल हुए। बर्लिन विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद वे दर्शन विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। पृष्ठ संख्या 209, फिक्टे का गोइटे और दांते से भी अच्छा परिचय था। उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें समस्त ज्ञान के मूलाधार या फाउंडेशन ऑफ द होल साइंस ऑफ नॉलेज और आचार शास्त्र, साइंस ऑफ इथिक्स अत्यंत प्रसिद्ध है। फिक्टे एक महान चरित्रवान दार्शनिक के साथ साथ महान वक्ता और महान देशभक्त भी थे। जब नेपोलियन की सेना जर्मनी को रौंद रही थी, तब फिक्टे ने अपनी शक्तिशालिनी लेखनी और वाणी द्वारा देश प्रेम की उत्कट भावना का शंखनाद किया और जर्मनी के राष्ट्रत्व को जागृत रखा, जिसके कारण फ्रांसीसी सेना को पीछे हटना पड़ा। फिक्टे की गृहिणी जब अस्पताल में घायल सैनिकों की शुश्रूषा कर रही थी, तब उन्हें संक्रामक ज्वर हो आया और उनसे यह संक्रामक ज्वर फिक्टे को लग गया, जिसके कारण युद्ध काल में ही इस कर्तव्य परायण देश प्रेमी दार्शनिक का देहावसान हो गया। फिक्टे के स्मारक पर यह वाक्य अंकित है, आचार्य उज्ज्वल आकाश के समान चमकते रहेंगे और वे जो अनेकों को कर्तव्य पथ पर प्रेरित करते हैं, ज्वलंत नक्षत्रों के समान सदा सदा के लिए चमकते रहेंगे। कांट के आलोचनात्मक विज्ञानवाद का, इन सिद्धांतों का कि हमारी बुद्धि प्रकृति की निर्माण करती है और बुद्धि में ज्योति तथा शक्ति विशुद्ध आत्म तत्व से आती है, कि विशुद्ध आत्म तत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति आचार मूलक ज्ञान में होती है, जिनमें स्वातंत्र है और कर्तव्य का अनिवार्य आदेश है, फिक्टे पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। फिक्टे के अनुसार कांट का दर्शन अपूर्ण रह गया है और स्वयं कांट अपने लक्ष्य में पूर्णतया सफल नहीं हो पाए हैं। फिक्टे ने इस कमी को पूर्ण करने का प्रयास किया है। कांट का सबसे बड़ा दोष व्यवहार और परमार्थ के द्वैत को वास्तविक मान लेना था। इंद्रिय संवेदन और बुद्धि के बीच कांट ने एक अपूर्व खाई खोद दी। फलतः द्वैतवाद और अज्ञेयवाद के अजगर कांट के दर्शन को लीलने के लिए मुंह बाए खड़े हैं। इंद्रिय संवेदनों का कारण अज्ञेय बाह्य परमार्थों को मानना भूल है। यदि ये परमार्थ वस्तुतः अज्ञेय हैं, तो इन पर सत्ता द्रव्य और कार्य कारण भाव के बुद्ध विकल्प क्यों थोपे जा रहे हैं? यह कैसे कहा जा सकता है कि ये परमार्थ है और अज्ञेय है, और संवेदनों के उत्पादक कारण हैं? फिक्टे के अनुसार कांट के ये तथाकथित अज्ञेय बाह्य परमार्थ भी वस्तुतः हमारे ज्ञान द्वारा ही निर्मित हैं। ये भी हमारे ज्ञान के बाहर नहीं हैं। संवेदन भी ज्ञान का ही रूप है। पृष्ठ संख्या 210। बाह्य जगत भी आत्म तत्व की ही सृष्टि है, इनमें कोई मौलिक भेद नहीं। इस प्रकार फिक्टे ने सर्वप्रथम कांट के द्वैतवाद और अज्ञेयवाद रूपी दोषों को दूर किया। द्वितीय, फिक्टे ने यह बताया कि कांट के आचार मूलक ज्ञान का अनिवार्य आदेश नियम या कैटेगोरिकल इम्परेटिव भी मौलिक नहीं है। मौलिक नियम आत्म का संकल्प स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का अर्थ न तो परतंत्रता है और न अतंत्रता। स्वतंत्रता का असली अर्थ है ज्ञान तंत्रता। आत्मा का संकल्प ज्ञान तंत्र है और इसीलिए इसका आदेश अनिवार्य है। आत्मा के मौलिक संकल्प स्वातंत्र नियम से ही अव्यवहार आदेश नियम निकलता है। तृतीय, कांट ने शुद्ध ज्ञान और आचार मूलक ज्ञान का जो भेद किया वह भी उचित नहीं है। दर्शन जीवन के लिए है और जीवन आचार मूलक है। ज्ञान आत्मा के संकल्प का ही अंग है। चित शक्ति और संकल्प शक्ति में कोई भेद नहीं। फिक्टे ने विज्ञानवाद की प्रतिष्ठा की। बाह्य जगत जो जड़ और अनात्म रूप प्रतीत होता है वस्तुतः आत्मा का ही परिणाम है। आत्मा की चित शक्ति ही अचित के रूप में भासित होती है। चित और अचित में कोई मौलिक भेद नहीं क्योंकि दोनों एक ही आत्म तत्व के दो रूप हैं। वस्तुतः चित की ही सत्ता है। सत से चित नहीं निकलता, चित से सत निकलता है। चित सदा सत और केवल सत ही नहीं चेतन सत है। अतः अचेतन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह चेतन का ही परिणाम है। विज्ञान ही वस्तु के रूप में परिणत होता है। वस्तु विज्ञान के रूप में परिणत नहीं हो सकती। अतः विज्ञानवाद या आइडियलिज्म वस्तुवाद या रियलिज्म से कहीं श्रेष्ठ है क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत वस्तु आ जाती है किंतु वस्तु के अंतर्गत विज्ञान का समावेश नहीं हो सकता। विज्ञान आत्मा का स्वरूप है। विज्ञान का अर्थ है प्रकाश। अतः आत्म तत्व स्वप्रकाश और स्वयं ज्योति है। यह स्वतः सिद्ध है। इसकी सत्ता का अपलाप नहीं हो सकता। यह विशुद्ध ज्ञाता है। प्रत्येक विचार में, संकल्प में, प्रत्येक इच्छा में इस आत्मा की सत्ता प्रस्फुटित होती है। विज्ञान प्रकाश रूप है, प्रकाश चिद्रूप है, चित शक्ति रूप है। आत्मा विज्ञान का आश्रय भूत है, द्रव्य नहीं है। और न विज्ञान ही इसका आगंतुक धर्म है। आत्मा विज्ञान स्वरूप है, वह विशुद्ध ज्ञाता है और ज्ञान ही उसका स्वरूप है। ज्ञान और ज्ञाता में, शक्ति और शक्तिमान में, प्रकाश और प्रकाशक में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। आत्मा चित शक्ति रूप है और चैतन्य संकल्प रूप है। अपनी चित शक्ति के कारण आत्मा स्वचेतन रूप या सेल्फ कॉन्शियस प्रतीत होता है। पृष्ठ संख्या 211। स्वचेतन में स्व के साथ साथ ही पर की भी अपेक्षा रहती है। विषयी के साथ ही विषय की भी अपेक्षा रहती है। अन्यथा स्व या विषयी ए नाम सार्थक नहीं हो सकते। अतः स्वचेतन में आत्मा विषयी और विषय दोनों बनता है। अर्थात आत्मा ज्ञाता बनकर स्वयं को अपना ज्ञेय बनाता है और अपने द्वारा ही अपना ज्ञान करता है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जो ज्ञाता है वह ज्ञेय कैसे बन सकता है, जो विषयी है वह विषय कैसे बन सकता है। साथ ही एक दूसरा प्रश्न भी है कि ज्ञाता का अस्तित्व बिना ज्ञेय कैसे हो सकता है, क्योंकि यदि कोई ज्ञेय न हो तो ज्ञाता किसका होगा। फिक्टे के अनुसार दोनों प्रश्न सत्य है और इन दोनों का उत्तर यही है कि आत्मा स्वयं अपने आप को अपनी संकल्प शक्ति से अनात्मा के रूप में प्रकट करता है और अनात्मा को अपने ज्ञेय बनाकर अपना ज्ञातित्व सार्थक करता है। ज्ञाता और ज्ञेय, विषयी और विषय, चित और अचित, जीव और जगत दोनों वस्तुतः एक ही आत्म तत्व के दो रूप हैं। इनमें जो विरोध होता है वह आत्यंतिक विरोध नहीं है, वह केवल कल्पित भेद है। यह भेद परिच्छेद या सीमा के कारण होता है। आत्मा अपने आप को ज्ञाता जीव के रूप में सीमित करता है और साथ ही ज्ञेय जगत के रूप में भी सीमित करता है। दोनों कार्य आत्मा की संकल्प शक्ति से एक साथ होते हैं, किंतु यह विरोध वास्तविक न होने के कारण इस कल्पित भेद को मिटाने की प्रवृत्ति भी आत्मा में स्वतः होती है। अतः इस विरोध का समन्वय होना आवश्यक हो जाता है और यह समन्वय होता है स्वचेतन में, जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक हो जाते हैं। स्वप्रकाश आत्म तत्व में ज्ञाता और ज्ञेय, जीव और जगत, चित और अचित दोनों का समन्वय हो जाता है। यह स्वप्रकाश आत्म तत्व परमात्मा है और इसी की स्वतंत्र सत्ता है। जीव और जगत, आत्मा और अनात्मा दोनों इस चिद्रूप परम सत्य के परिणाम हैं। इस प्रकार फिक्टे के दर्शन में तीन मुख्य सिद्धांत हैं। प्रथम, स्वप्रकाश परमात्म तत्व या एब्सोल्यूट ईगो ही एकमात्र सत्य है और इसके प्रकाश का अर्थ है इसका चित शक्ति या संकल्प शक्ति, जो इसी का स्वरूप है। द्वितीय, अपनी चित शक्ति के कारण यह परमात्म तत्व स्वयं का परिच्छिन्न या सीमित करके एक ओर ज्ञाता या विषयी जीव आत्मा या ईगो के रूप में प्रकट करता है और दूसरी ओर स्वयं को ज्ञेय या विषय या अनात्म जगत या नॉन ईगो के रूप में प्रकट करता है। तृतीय, यह परमात्म तत्व अपने स्वचेतन रूप में ज्ञाता और ज्ञेय के भेद का अतिक्रमण करके जीव और जगत के समन्यात्मक रूप में प्रतीत होता है। पृष्ठ संख्या 212। परमात्मा की इस संकल्प शक्ति से फिक्टे ने तीन नियम निकाले हैं, तादात्म्य या आइडेंटिटी, विरोध या कंट्राडिक्शन और पर्याप्त कारण सफिशियंट रीजन। इनको ही क्रमशः सत्ता या रियलिटी, निषेध या निगेशन और परिच्छेद या सीमा, लिमिटेशन या डिटर्मिनेशन कहा जा सकता है। जीव आत्मा को अपना बोध तादात्म्य के रूप में होता है। मैं हूँ और मैं सदा मैं ही हूँ। जीवात्मा ज्ञाता है और उसकी सत्ता प्रत्येक ज्ञान या संकल्प में स्फुटित होती है, किंतु ज्ञाता के साथ ही ज्ञेय भी जुड़ा हुआ है। विषयी सदा विषय की अपेक्षा रखता है, अतः आत्मा में से ही अपनी शक्ति के कारण अनात्म जगत की भी विषय के रूप में प्रतीति होती है। तादात्म्य से विरोध निकल पड़ता है, किंतु इस विरोध का पर्याप्त कारण भी अवश्य होना चाहिए। आत्मा में से अनात्मा क्यों निकलता है? फिक्टे का उत्तर है, आत्मा की अपनी संकल्प शक्ति के कारण, जिसमें आत्मा स्वयं को परिच्छिन्न या सीमित बना लेती है, जीव तथा जगत के रूप में प्रतीति होता है। किंतु यह विरोध कोई आत्यंतिक विरोध तो है नहीं, यह तो केवल परिच्छेद या भेद है, अतः इसका निवारण होना भी आवश्यक है। और यह निवारण होता है स्वप्रकाश परमात्म तत्व के स्वचेतन रूप में, जिसमें जीव और जगत, आत्मा और अनात्मा दोनों की सीमा हटकर दोनों का समन्वय हो जाता है। जीवात्मा अद्वैत रूप या ईगो इन इटसेल्फ है, अनात्म जगत द्वैत रूप ईगो आउटसाइड इटसेल्फ है, और परमात्मा विशिष्टा द्वैत रूप ईगो इन एंड फॉर इटसेल्फ है। आत्मा अपनी संकल्प शक्ति के कारण पहले स्वयं को सीमित जीवात्म के रूप में प्रकट करता है, यह पक्ष या थेसिस है। फिर ज्ञाता जीव के साथ ही आत्मा में से ही अनात्म रूप ज्ञेय जगत भी उत्थापित होता है, यह प्रतिपक्ष या एंटीथेसिस है। और अंत में ज्ञाता और ज्ञेय के इस भेद का सामंजस्य परमात्मा के स्वचेतन रूप में होता है, यह समन्वय या सिंथेसिस है। वस्तुतः ये तीनों पक्ष, प्रतिपक्ष और समन्वय परमात्मा की संकल्प शक्ति के ही तीन रूप हैं। परमात्मा एक साथ दृष्टा और सृष्टा दोनों है। चित शक्ति ही संकल्प शक्ति है। संकल्प शक्ति की सृष्टि छह रूपों में प्रतीत होता है। प्रथम इंद्रिय संवेदन सेंसेशन, द्वितीय प्रत्यक्ष परसेप्शन, तृतीय वस्तु प्रतिबिंब इमेज, चतुर्थ बुद्धि अंडरस्टैंडिंग, पंचम धारणा जजमेंट और षष्ठ प्रज्ञा रीजन। पृष्ठ संख्या 213। इनमें संवेदन और प्रत्यक्ष निर्विकल्प और अद्वैत रूप है। प्रतिबिंब में द्वैत का उदय होने लगता है, जो बुद्धि और धारणा में जाकर पूर्णतया सविकल्प बन जाता है। प्रज्ञा में फिर द्वैत और अद्वैत का समन्वय हो जाता है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आत्म तत्व अपनी संकल्प शक्ति से स्वयं को परिच्छिन्न क्यों करता है? फिक्टे का उत्तर है कि यह परिच्छेद इसलिए होता है कि आत्मा इस परिच्छेद के ऊपर उठकर अपने समन्यात्मक स्वचेतन रूप का ज्ञान करे। नैतिक बोध या संकल्प स्वातंत्र तभी संभव हो सकता है जब बाधा की सृष्टि करके उस बाधा का अतिक्रमण किया जाए, जब द्वैत की सृष्टि करके उस पर विजय प्राप्त की जाए। मुक्ति के लिए ही बंधन का सृष्टि होती है। नैतिक जीवन का अर्थ ही यही है कि हम बाधाओं पर विजय प्राप्त करके स्वरूप लाभ करें। यह परमात्मा की लीला है कि वे स्वयं को परछिन्न जीवों और परछिन्न जगत के रूप में सृष्टि करके फिर जीव और जगत का समन्वय करते हैं और जीवों द्वारा अपने स्वरूप लाभ का आनंद लेते हैं। जीवात्मा या थ्योरेटिकल ईगो अपने आप को अपने प्रतिपक्षी अनात्म जगत के बंधन में पाती है। जीवात्मा को वस्तुतः परछिन्न न होकर परमात्म रूप होना चाहिए, जो उसका स्वरूप है। अतः जीव का कर्तव्य है कि अपने आप को जगत के बंधन से मुक्त करके अपने परमात्म स्वरूप का लाभ करे। यह नैतिक जीवन प्रैक्टिकल ईगो द्वारा ही संभव हो सकता है। अतः नैतिक जीवन द्वारा जीव के स्वरूप लाभ करने के लिए ही सृष्टि प्रकट हुई है। बर्लिन आने के बाद फिक्टे की विचारधारा में कुछ परिवर्तन हुआ। कई आलोचकों ने फिक्टे के इस परिवर्तन को उनके दर्शन की दूसरी भिन्न धारा के रूप में ग्रहण किया है और इसे उनकी दार्शनिक अवनत माना है, किंतु वास्तव में यह दूसरी धारा नहीं है, उसी धारा का संशोधित रूप है। और न यह अवनित है किंतु वस्तुतः उन्नति है। इस परिवर्तन का स्वरूप यह है, पहले फिक्टे ने ईश्वर को विशिष्टाद्वैत परमात्म रूप माना था और उनकी चित शक्ति को संकल्प शक्ति मानकर मानव के नैतिक जीवन में कर्म को प्रधानता दी थी, किंतु अब ईश्वर को विशिष्टाद्वैत से भी ऊपर विशुद्ध अद्वैत रूप उनके संकल्प को विशुद्ध चित रूप और इस चित को विशुद्ध सत रूप स्वीकार किया गया था। ईश्वर की भक्ति रूप निर्विकल्प अनुभूति को नैतिक कर्म से भी ऊपर माना गया है और नैतिक कर्म को इस अनुभूति की प्राप्ति का मुख्य साधन स्वीकार किया गया है।